ஹரிஹந்தாணம். நமோ சித்தாணம், நமோ ஆயிரியாணம், நமோ வஜ்ராயாணம், நமோ லோயே சவ்வசாஹூணம். வந்தித்து சவ்வ சித்தே குருமணோ அமல் பத்தே ஓச்சாமி சமய பாகுடு ம். நம சமய சாராய ஸ்வானுபூத்யாச்சகாசதே பாவாய சர்வபாவாந்தரச்சிதே சர்வபாவாந்தரச்சிதே.
கிரந்தாதிராஜ் சமயசாரி ஹே ஆச்சாரிய குந்து குந்த சுவாமி கி பரம உபகாரி யஹ அனுபம் கிருதி, ஜிஸ்மே சமய ஔர் சார் கோ சம்ஜாயா ஹே. சமய மானே க்யா ஹோதா ஹே ஔர் சார் க்யா சீஜ் ஹே. தோ கஹா சமய சப்த கா அர்த் பதார்த் ஹோதா ஹே. समय माने वस्तु होता है. सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु से बना है समय. जो गमन करे, जो परिणमन करे, उसका नाम समय है. तो समय शब्द में छहों द्रव्य शामिल हो गए. आवाज थोड़ी सी बढ़ाने
बढ़ाने तो चाहिए.
छहों द्रव्य शामिल हो गए समय शब्द में. अब कहा सार, तो समय मतलब यदि छह द्रव्य है तो उसमें सारभूत क्या है? तो कहा छह द्रव्यों में सारभूत अपना एक आत्मा ही है. इसलिए समय और सार, समय सार माने हो गया आत्मा. तो इस ग्रंथ समय सार में किसकी चर्चा होगी? बोले उस आत्मा की चर्चा होगी. ये तो हो गया पहला अर्थ. एक और अर्थ किया जाता है समय शब्द का, समय. तो समय शब्द का अर्थ करते हैं, वो कहते हैं जो वस्तु जाने और परिणमन करे, ये है समय. माने समय शब्द का अर्थ जीव पदार्थ के अर्थ में करते हैं. समय शब्द का प्रयोग आत्मा के अर्थ में करते हैं. मैं पूछूंगा भी समय माने आत्मा, ये दूसरा अर्थ हुआ. पहला अर्थ क्या था? समय मतलब, समय मतलब पदार्थ. समय माने पदार्थ, छह द्रव्य और सार. तो समय सार माने हो गया आत्मा, क्योंकि छह द्रव्यों में सारभूत आत्मा ही है. लेकिन एक दूसरा और मार्ग एक अर्थ किया अमृत चंद्राचार्य देव ने. उन्होंने क्या बताया? समय माने आत्मा, क्योंकि अकेला समय शब्द का अर्थ परिणमन करना ही नहीं है. जो जो धातुएं हैं परिणमन और गमन के अर्थ में प्रयोग की जाती है, उनका प्रयोग जानने के अर्थ में भी होता है. इसलिए समय शब्द का मतलब ही आत्मा हो गया. पहले तो समय माने पदार्थ कहा था और उसमें सारभूत कहकर के आत्मा की बात कही थी. समय सार, इस पूरे पूरे का मतलब हो गया आत्मा. अब दूसरा अर्थ, समय का मतलब ही आत्मा है, तो फिर सार क्या होगा उसमें? कुछ आवाज आ रही बार बार में, कुछ ऐसी. समय माने आत्मा, समय. तो सार क्या होगा उसमें? अब क्या ठीक है? देखिए, समय माने आत्मा और सारभूत क्या है? बोले शुद्ध आत्मा सारभूत है. माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित जो शुद्ध आत्मा है, वो आत्मा है समय सार. दो अर्थ हो गए. पहला समय का अर्थ क्या किया था?
पदार्थ.
पदार्थ. तो उन पदार्थों में जो सार सारभूत है जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, कल हमने छह द्रव्य की चर्चा की आपके बीच में, इन छह पदार्थों में से सारभूत कौन, बोले छह में से पांच में कुछ सार नहीं है, अकेला जीव में ही सार है, इसलिए समय सार का अर्थ आत्मा कर दिया। अब दूसरे अर्थ में समय माने क्या कहा, आत्मा, समय माने सिर्फ आत्मा, अकेला आत्मा, एक आत्मा। अब सारभूत क्या होगा, क्योंकि आत्मा तो अशुद्ध भी है और शुद्ध भी है, आत्मा तो बहिरात्मा भी है, अंतरात्मा भी है, परमात्मा भी है, आत्मा में तो राग द्वेष विकार भी है और निर्मल पर्याय भी है। आत्मा शब्द का प्रयोग या जीव शब्द का प्रयोग असमान जाति द्रव्य पर्याय के अर्थ में भी करते हैं। ये कौन है, ये जीव तो है, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, पांच इंद्रिय जीव, चींटी जीव है, मच्छर जीव है, तो कौन सा जीव, जीव शब्द तो कॉमन हो गया, लेकिन जीव में जो सारभूत है, बोले सारभूत मतलब बोले द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित आत्मा, वो सार है। सार सार मतलब होते हैं एसेंस, निकाल लो इसका अर्क, अर्क निकाल लिया उसके से, मूल चीज निकाल ली, दूध में से हमने घी निकाल लिया, मक्खन निकाल लिया, तो सारभूत चीज निकल गई। इसी तरह से आत्मा में से सारभूत बात निकालो तो क्या निकलेगी, कैसे निकलेगी, क्या क्या छोच में छोड़ दिया जाएगा, कौन सी चीज, जैसे मक्खन निकाल लेने के बाद अब क्या चीज बच गई, रब खाच बच गई है ना, तो अभी आत्मा शुद्ध आत्मा यदि निकालेंगे तो क्या क्या निकल जाएगा, बोले द्रव्य कर्म को बाहर करो, भाव कर्म से भी भिन्न और नौ कर्म से भी भिन्न, तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से भिन्न जो अपना शुद्ध आत्मा है उसका नाम है समय सार। तो इस ग्रंथ समय सार में चर्चा किसकी होगी,
आत्मा,
उस आत्मा की चर्चा होगी जो आत्मा द्रव्य भाव और नौ कर्म से रहित शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा की चर्चा होगी, उस पवित्र आत्मा की चर्चा होगी पूरे समय सार ग्रंथ में। नौ अधिकार है इस समय सार ग्रंथ में, 415 गाथाएं हैं, 415, तो 4 चार गतियां, 1 ये चारों गतियों में एक जायक आत्मा ही सारभूत है, तो इससे क्या होगा, बोले पंचम गति की प्राप्ति होगी। 415 गाथाएं है ना, कि क्या करेंगी ये 415 गाथाओं में, कहाँ तक पहुँचाएंगे, बोले यहाँ तक, पंचम गति तक पहुँचाएंगे। ऐसा कह सकते हैं पांच भावों में से चार भाव तो पर्याय रूप होने से अशुद्ध है, और एक भाव जो बच गया परम पारिणामिक भाव, वही पंचम गति में ले जाने वाला है। ये ऐसी 415 गाथाएं, नौ अधिकारों में जो बात कही है वो बहुत ही मार्मिक बातें कही है, सब जगह पर घुमा फिरा करके आत्मा तक ले आए, जहाँ जाएंगे जिस एंगल से बढ़ेंगे उसमें शुद्ध आत्मा को देख, आत्मा को देख, आत्मा को क्यों दिखा रहे हैं, आत्मा को दिखाने का क्या प्रयोजन है, हमें बार बार आत्मा क्यों दिखाते हो, हम आपको आत्मा इसलिए दिखाते हैं कि जिसने आत्मा को देखा उसने सारे लोकालोक को देखा, जिसने आत्मा को जाना उसने सब कुछ जान लिया, आत्मा को जानने के पश्चात और कुछ जानने योग्य बचता नहीं है। तो समय सार पढ़ा आपने, पढ़ा क्या किसी ने समय सार, आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, तो आपने आत्मा देखा, नहीं देखा, तो समय सार देखने पर आत्मा नहीं दिखा तो फिर क्या समय सार देखा, समझ में आ रही है बस, आत्मा इस समय सार में मिलता क्या है, समय सार में वर्णन किस चीज का है। अच्छा पेरिस गए आप लोगों में से कोई, पेरिस के मुकुंद में आप भी गए, आप भी गए, आईपी टावर देखा, और कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं गया तो था लेकिन आईपी टावर नहीं देखा, तो गया था ही तो था वहाँ, तूने देखा क्या फिर? वहाँ जाकर के तूने वो नहीं देखा तो क्या देखा? आगरा जाकर के तूने ताजमहल नहीं देखा तो फिर क्या देखा? हमें मान लीजिए, हमें ऐसा एग्जांपल देते हैं कभी कभी, हम पूछते हैं बताओ हमें राम के बारे में जानना हो तो कहाँ मिलेगा? बोले पद्म पुराण में। राम के बारे में जानना हो तो कहाँ मिलेगा? पद्म पुराण में। और यदि जैन महाभारत के बारे में जानना हो तो? बोले हरिवंश पुराण में। और पार्श्वनाथ के बारे में जानना हो तो? बोले पार्श्व पुराण में, उनमें उनकी चर्चा मिलेगी। और श्रेणिक के बारे में जानना हो तो बोले श्रेणिक चरित्र पढ़ो, उनमें श्रेणिक की चर्चा मिलेगी। अब किसी ने कहा हमें आत्मा के बारे में जानना है तो कहाँ मिलेगा? बोले समय सार में। बस ये यही चक्कर हो गया, तुम आत्मा को समय सार में देखते हो इसलिए तुम्हें आत्मा नहीं मिलता, समय सार को अपने में देखो तो मिलेगा। एक भाई ये समय सार में आत्मा नहीं है, आत्मा तेरे देह देवालय में विराजमान है। ये समय सार तो इशारा करता है, ये समय सार तो अवलंबन प्रदान करता है, ये समय सार उस आत्मा को बताने वाला है। लेकिन इस बाह्य समय सार को देखने पर वो बाह्य समय सार ही दिखेगा, आत्मा तो आत्मा को देखने पर दिखेगा। लेकिन क्या करें, यदि हम डायरेक्ट आत्मा को जानना चाहते हैं तो आत्मा दिखता नहीं है, कैसे देखें आत्मा को बताओ कैसे देखें? ये ऐसा समझता है जगत के पदार्थों को जैसे देखते हैं वैसे ही आत्मा को देखो, उन्हें नहीं दिखेगा। जगत के पदार्थों को जैसे चक्षु इंद्रिय से देखता है उसी प्रकार अपने आत्मा को देखना चाहे तो आत्मा नहीं दिखेगा। भाई आत्मा को देखने के लिए तो आत्मा को देखना ही उपाय है। इस आत्मा का स्वरूप क्या है, ये आत्मा है कैसा, इस आत्मा की महिमा किस प्रकार की है, ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जो 415 गाथाओं में बताया तो सामने बैठे हुए शिष्य कहने लगे भाई साहब कौन पढ़ेगा इतनी गाथाएं, हमारे वक्त की बात नहीं, हमने तो नहीं बता सकता इतनी गाथाएं, 415 गाथाएं, अपने वो तो 2% की बात कह दो, शॉर्ट में सारभूत अपना काम हो जाए, इतनी सी बात कह दो। तो बोले इतनी सी बात जाननी है तो तू 12 गाथाएं पढ़ ले। हमने कार की 12 गाथाएं, और अब 12 भी बहुत है कि 415 से घटा करके 12 कह दी, तू भी तुझे पार नहीं पढ़ रही है, ज्यादा हो जाएगा, टाइम कहा है, कम समय है तो और शॉर्ट करो। तो कहा बोले तू 7 गाथाएं पढ़ ले, तो 7 भी ज्यादा हो जाएगा, तो एक काम कर तू शुरू की 5 भी छोड़ दे, सिर्फ 6ठी 7वीं गाथा पढ़ दे। अब इतना तो कर सकता है क्या? तो इतना भी नहीं कर सकता, बोले इतना नहीं कर सकता तो तेरी कोई जरूरत नहीं है, तुझे अपना काम कर। इतना सा भी नहीं कर सकता, आत्मा को जानना है और तू कुछ भी नहीं कर सकता है, इस 6ठी गाथा और 7वीं गाथा ये सारे द्वादशांग का सार है। इन 2 गाथाओं में द्वादशांग का सार भर दिया गया है, आत्मा के ऐसे स्वरूप को बतलाया है आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जिस स्वरूप का अनुभव ये निरंतर प्रेम किया करते थे। 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा दी, जब शुरू की 5 क्यों छोड़ दी अपन ने, क्योंकि 1ली गाथा तो मंगलाचरण, 1ली गाथा में क्या वर्णन, मंगलाचरण की चर्चा की, सिद्धों को वंदन किया, सिद्ध स्वरूप जायक को वंदन किया, वंदित को सब सिद्धे कह करके, तो 1ली गाथा कह सकते। अब दूसरी गाथा में स्व समय और पर समय को बतलाया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो प्रवृत्त आत्मा है वो स्व समय है, और जिसका उपयोग जिसका चित्त जगत के बाह्य पदार्थों में ही भ्रमता रहता है वो पर समय है, जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वो पर समय, स्व समय अपना आत्मा, पर समय पर पदार्थों में उपयोग का भ्रमित, मिथ्या दृष्टि पर समय है, सम्यक दृष्टि स्व समय है। ये दूसरी गाथा में बाकी। फिर तीसरी गाथा में समय की महिमा बतलाई, समय की महिमा माने पदार्थ की महिमा। उन्हें सुनो ये जगत में जितने पदार्थ हैं ये सारे पदार्थ अत्यंत सुंदर हैं, सारे पदार्थ। फूल को तो सारा जगत सुंदर कहता है लेकिन कांटों की अपनी सुंदरता है। सुगंधित पदार्थों को तो सब सुंदर कहते हैं लेकिन दुर्गंधित पदार्थ भी सुंदर हैं। ये कहा तीसरी गाथा में। उसने कहा कीचड़ भी सुंदर है, मलिन से मलिन पदार्थ, जिन पदार्थों की तुम्हें मलिनता दिख रही है अरे उन पदार्थों को संयोग से भिन्न स्वभाव से देखो तो आपको शुद्धता दिखेगी, तो सुंदरता दिखेगी। उस तीसरी गाथा में सुंदरता की बात कही। फिर गाथा हमें तो दिखता नहीं, हमें नहीं दिखता है। तो फिर आचार्य देव ने चौथी गाथा में कहा हम क्या करें भाई, अनादि काल से तुमने उस शुद्ध आत्मा की चर्चा को सुनाई नहीं, आज तक तुमने अनादि काल से काम भोग बंधन की कथा को ही सुना है, उसी को परिचय में लिया है, उसी चर्चा को अनुभव में लिया है, काम भोग बंधन की चर्चा को। चौथी गाथा में चर्चा की है इस तरह की, और शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा को तुमने कभी सुना नहीं है। कभी कभी जब चौथी गाथा की चर्चा करते हैं हम लोग, व्याख्या करते हैं, तो हम ऐसा प्रश्न करते हैं सभा में बैठे हुए लोगों से, सही बताओ आपने कभी सुना नहीं है क्या? अभी हमने कहा चौथी गाथा पढ़ करके कि तुमने एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा को कभी सुना नहीं है, शुद्ध आत्मा की चर्चा को सुना नहीं, परिचय नहीं लिया, अनुभव नहीं किया, ये बात हमने आपसे कही, तो सही बताओ आपने सुना नहीं क्या? आपको ऐसा तो नहीं है, सुना तो कई बार है, ये समय सार हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, कई बार पढ़ा है। ये छठी गाथा भी पहली बार नहीं पढ़ेंगे यहाँ, ये कई बार पढ़ ली है हमने। आचार्य देव ने जो कहा है वो क्या झूठ का है? जो बात लिखी है तूने एकत्व विभक्त आत्मा की बात नहीं सुनी और तूने हमेशा काम भोग बंधन की कथाएं ही सुनी है, ये क्या आचार्य देव झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं कह रहे हैं भाई, सच में हमने सुनी नहीं। कर्णेन्द्रीय का विषय बनने को सुनना नहीं कहते, हम इसको ही सुनना समझते हैं। कान का विषय बना है सुन लिया, कर्णेन्द्रीय का विषय सुन लिया, अरे नहीं भाई इसे नहीं कहते सुनना, इसका नाम सुनना नहीं है। सत्य रूप परिणमन करने का नाम सुनना है। आप जानते हो सुनने की कितनी महिमा गई है? हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है सुनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ने से, पढ़ने से कल्याण नहीं होगा सुनने से कल्याण होगा, ये हमारे शास्त्रों के वचन है, आगम वचन कह रहा हूँ आपसे। पढ़ने से नहीं होगा सुनने से होगा। कारण क्या है महेंद्र भाई, ऐसा क्यों? सुनने की इतनी कीमत क्यों कह रहे हैं? सुनने से कई तरह से सीखता है, पढ़ने से तो अकेला चक्षु इंद्रिय से पढ़ता है, लेकिन सुनने में कर्ण इंद्रिय के साथ साथ चक्षु इंद्रिय से भी पढ़ता है, कई इंद्रियों से पढ़ रहा है सुनने में। जब समय सार की बात की जाती है तो जब सुनाता है कोई व्यक्ति तो सुनाने वाला व्यक्ति अकेला जबान से नहीं सुनाता है, वो अपने चेहरे से सुनाता है, वो अपने हाव भाव से सुनाता है, उसके एक्सप्रेशन से बात कही जाती है। इसलिए आज भी गाथा में जाकर के जो बात कही कि कोई उपदेश दे रहे थे आर्य और मलेच्छों को उपदेश दिया जा रहा था, भाषा नहीं समझते तो फिर क्या समझ रहे हैं? जो कह रहे हैं ना उससे पता लग रहा है कुछ भले की बात कह रहे हैं। मैंने सुनना कितना महत्वपूर्ण है। आचार्यों ने ऐसे ऐसे प्रयोग किए छंदों में, भक्तियों में, स्तुतियों में, प्राचीन कवियों ने जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन वैन पढ़त नहीं कहा उन्होंने सुनत। दौलत राम जी छेड़ावा लिख रहे थे और छेड़ावा लिखते हुए उन्होंने शुरू के दूसरे तीसरे छंद में कहा साही सुनो भवी मन फिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। क्या कहा? हम ये जो लिख रहे हैं, ये जो कथा कह रहे हैं, इसको हे भव्य जीवो अपने मन को स्थिर करके क्या करना, ताही सुनो। हिसाब लिख रहे हो आप, सुना का रहे हो, बोलता रहे हो, इसको सुने हम। आप लिख रहे होते हो ताही पढ़ो, मैं जो लिख रहा हूँ इसको पढ़ना। लिख रहे नहीं नहीं, पढ़ने से काम नहीं होगा, सुनने से काम होगा। श्रोता रहे सावधान से, यार श्रवण मंतु, सावधानी से सुनो, सुनने की बात सही है। दौल समझ सुन चेत सयाने, कब चेतेगा, सुनने के बाद चेतेगा। सुनने की बहुत बात कही है। देखो आप सम्यक दर्शन की बात करें हैं, तो उसमें मैंने कहा सुनना महत्वपूर्ण है, पढ़ना नहीं। कैसे
देखना
लब्धि, देखना लब्धि में कहीं पढ़ने की बात नहीं कही, पढ़ करके देखना मिल गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपने पढ़ लिया और आपको देखना मिल गई, नहीं होगा, आपको सुनना पड़ेगा। गुरु की बात लिखी हुई मिल गई और आपने पढ़ लिया, हमें जरूरत नहीं है, हमें तो मिल गया कि सुनो भाई, इनको सुनो, इनकी बात को, ये जो बात कहते हैं इस बात को सुनो, क्योंकि सुनने का नाम देशना लब्धि। देशना लब्धि सुनकर होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पांच लब्धियां चाहिए, पांच लब्धियों पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। एक का नाम श्रेयोक्षम, एक का नाम विशुद्धि, और तीसरे नंबर पर पढ़ना, पढ़ना
नहीं,
सुनना। देशना लब्धि सिर्फ प्रायोग्य और कर्ण। माने महेंद्र भाई, पांच लब्धियों में जो प्रोसेस कही है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, इनमें पांच में से चार तो काम अंदर में होंगे और एक काम निमित्त रूप से है, वो देशना है। माने देशना के बिना इस जीव को विषय वस्तु स्पष्ट नहीं होती, इसलिए देशना का महत्व है। तो चौथी भाषा में क्या कहा कि तुमने कभी सुना ही नहीं है, सुन लेते तो काम हो जाता। हम कितने ऐसे उदाहरण छोटे छोटे से कई बार आपने सुने होंगे, बच्चे को कहा बेटा एक गिलास पानी पिला देना, टीवी देख रहा है वर्ल्ड कप चल रहा है, मैच देख रहा है, वो उठ नहीं रहा है, फिर कहा बेटा उठा नहीं जा रहा, एक गिलास पानी पिला दे, दो तीन बार कहा नहीं सुन रहा। फिर क्या हुआ, हमने थोड़ा डांट के कहा सुनता नहीं है क्या, बोलता सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अब वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है बताओ, आप क्या कहोगे। कोई व्यक्ति आता है ना आपके घर में, आप उसको कहते हो क्या बताऊं घर की हालत, ये सुनता ही नहीं। तो जो मेहमान आए थे उनके साथ में एक बच्चा भी आया था, उसने कहा अंकल सुनता नहीं है, तो एक है अच्छा ईएनटी वाला डॉक्टर, उसको दिखाओ। बोलो कान खराब है क्या उसके, ईएनटी वाला कुछ कर सकता है क्या, कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ सुनने का अर्थ कर्णेन्द्रीय का विषय बनाना नहीं है। सुनने का अर्थ कर्णेन्द्रीय का विषय होता, देखना लब्धि का अर्थ भी यदि अकेला सुनना मात्र होता तो असैनी पंचेन्द्रियों को भी सम्यक दर्शन हो जाता, सुनते तो वे भी। यदि देशना लब्धि का अर्थ अकेला कर्णेन्द्रीय का विषय बनना होता तो फिर जो असंगी जीव हैं, उन जीवों के भी कर्णेन्द्रीय का विषय बनने पर उनको भी सम्यक दर्शन हो जाता। ये सुनते तो हैं, लेकिन सतरूप परिणमन नहीं कर सकते, ऐसे सुनने की बात कही। ये बात चौथी भाषा में कही। फिर कहा भैया सुना दो, आप क्या सुनाओगे ये बताओ। मैंने जो तुमने नहीं सुना है ना वो सुनाएंगे, ये प्रतिज्ञा ली पांचवी गाथा में। पांचवी गाथा में कहा कि सुनो भाई, मैं अपने वैभव से, निज वैभव से एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा को सुनाऊंगा और तुम उसी आत्मा की चर्चा को गहराई से सुनना। मैं सुनाऊंगा उस आत्मा की चर्चा को अपने वैभव से और तुम सुनना अपने वैभव को देखकर। मैं बताऊंगा अपने में बैठकर और तुम सुनना अपने आप में बैठकर। तो समझ में आएगी, ये प्रतिज्ञा ली उन्होंने, एक चर्चा करूंगा बस, शुद्ध आत्मा की बात बतलाऊंगा। पांचवी गाथा में बात कही। फिर काली ध्रुव जाए भगवान आत्मा की चर्चा करूंगा, ये पांचवी गाथा में कही। कहा कुछ नहीं अभी, क्या कहूंगा उसकी प्रतिज्ञा ली है, क्या कहने वाला हूँ। ये बात पांचवी गाथा में हो गई। तो जो बात इन्होंने पांचवी गाथा में कही, प्रतिज्ञा ली, उस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया 415 तक। हर गाथा में ज्ञानी जी अपनी प्रतिज्ञा लेकर के छोड़ते नहीं है, भूलते नहीं है। प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप लगता है। ये प्रतिज्ञा ली है इन्होंने तो निभाएंगे कि नहीं, निभाएंगे। तो यहाँ छठी गाथा से फिर बात उसी एकत्र भक्त आत्मा की होती है। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है, आपको सुनना है आत्मा का स्वरूप? गर्दन हिला दो, हाँ ठीक है सुना दो, मैं सुन रहा ऐसे सुन रहे। आत्मा का स्वरूप सुनना है कि अपना स्वरूप सुनना है? आत्मा का स्वरूप सुनने तो कई बार सुना, ये आत्मा स्वरूप मतलब ऐसे समझता है जैसे किसी और की बात कर रहा हो। अरे अपने स्वरूप सुनने की बात है यहाँ इस पांचवी गाथा में, छठी गाथा में बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा है। वो शुद्ध आत्मा कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में ये गाथा शुरू होती है। प्रश्न क्या किया गाथा की उत्थानिका में, क्या कहा कि पांचवी गाथा में जो प्रतिज्ञा ली थी एकत्र विभक्त आत्मा को दिखाने की, अब छठी गाथा में उस आत्मा का स्वरूप बताते हैं। वो शुद्ध किस प्रकार कहा जाता है, उसकी शुद्धता कैसे है कि भाई आप यहाँ छठी गाथा में शुद्ध आत्मा की बात बताएंगे ना? हाँ शुद्ध आत्मा की बात बताएंगे। शुद्ध आत्मा की बात बतलाओगे तो महावीर भगवान की बतलाओगे आदिनाथ की? शुद्ध आत्मा तो परमात्मा है ना, तो परमात्मा की बात बताओगे तो उनकी बात सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी की बात करोगे ऐसे किसी कहानी सुनते रहे कि कहा सुन भाई वो शुद्ध आत्मा कोई और नहीं है, तू शुद्ध आत्मा है। ये आत्मा की जिस शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं, ये शुद्धता पर्याय में प्रकट होने वाली शुद्धता नहीं है, ये कुछ अलग प्रकार की शुद्धता है। ये मेरी शुद्धता की बात कर रहे हैं, मैं तो अशुद्ध हूँ, मुझमें कहा शुद्धता है? आप मेरे को शुद्ध बताना चाह रहे हो, मैं शुद्ध कहा हूँ, मैं तो अशुद्ध हूँ। तो आचार्य देव कहते हैं कि नहीं भाई, हम तेरी उस शुद्धता की बात कर रहे हैं जो शुद्धता कुछ अलग प्रकार की है। तुझे खबर नहीं है उस शुद्धता की, हम उस शुद्धता की चर्चा करेंगे, उस एकत्र विभक्त आत्मा को दिखाएंगे। कौन है वो शुद्ध आत्मा, वो शुद्ध आत्मा कैसा है, उस शुद्ध आत्मा को कैसे जाना जा सकता है, उस शुद्ध आत्मा को जानने की विधि और प्रक्रिया क्या है, सुनो इस छठी गाथा में। गाथा पढ़ते हैं हम यहाँ से। नवि हो दिया पमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धम नादो यो सो दुखो चेव। क्या एवं भणन्ति, इस प्रकार से कहा गया है, शुद्धो शुद्ध कहा गया है, इस प्रकार से शुद्ध कहा गया है, बहुत कुछ अलग अच्छी है भाई। न प्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात है तो वही है जो है तो है। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आचार्य जी यहाँ पर, वो जो आत्म तत्व है ना, वो जो है तो है। फिर आप कुछ बताओ उसके बारे में कि जितना भी बताएंगे उतना उससे दूर होते जाएंगे। क्या कहिए, जितना बताएंगे उतना उससे दूर 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 होते चले जाएंगे। कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। बोले जितना बताया गया है ना वैसा नहीं है, जितना बताएंगे आत्मा वैसा नहीं है। तो फिर जैसा है वैसा बता दो कि नहीं ऐसा नहीं कह सकते हम, जो है वो कहा नहीं जा सकता और जो कहा जा सकता है वो है नहीं। आप शब्दों से सुनना चाहते हो, आप शब्दों में पकड़ना चाहते हो, आप उस आत्मा को शब्द में बांधना चाहते हो। शब्दों में ताकत नहीं है जो उस आत्मा को बांध सके, शब्दों में सामर्थ्य नहीं है, वचनों में वो ताकत नहीं है जो आत्मा को पकड़ सके। समझ में नहीं आई, वचनों से नहीं पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा,
क्योंकि आत्मा भस्मातीत है। आप विकल्पों से पकड़ने का प्रयास करेंगे, ये भगवान आत्मा विकल्पातीत है। आप जैसा देखेंगे 100% वैसा नहीं है। आप अलग अलग एंगल से देखेंगे, इतना मात्र नहीं है तो फिर है कैसा ये तो बता दो। आपने बताने की प्रतिज्ञा ली है कि जो है तो है, कहना व्यवहार है, बोलना व्यवहार है, वचनों से नहीं कहा जा सकता है। ये अनुभव की चीज है भाई साहब। उस आत्मा को बता रहे हैं यहाँ, फील करो उस आत्मा को, अनुभव करो उस आत्म तत्व का। आत्मा के अनुभव से क्या होगा, समझ गए? आत्मा के अनुभव से क्या होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा? आत्मा के अनुभव से होता क्या है? आचार्य देव और भी कई ग्रंथों में जब हम खोल के देखते हैं तो आचार्य देव ये कहते हैं कि सुनो, तेरा कर्तव्य है आत्मा को जानना, बाकी कोई कर्तव्य नहीं है तेरा। समझ में आ रही है बात क्या कह दिया? क्षत्र चूड़ामणि चलता दो तीन प्रवचन किए हमने इस विषय के ऊपर। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ में 7वें लंब का 18वें नंबर का श्लोक है। 7वां लंब माने चैप्टर, वहाँ लंब चंद दिया है, 7वां लंब उसका 18 नंबर के श्लोक में पहला वाक्य कहते हैं आचार्य देव आदि सिंह पुरी, अपने आप को निजात्म तत्व स्वीकार करना ही तेरा कर्तव्य है। कर्तव्य बताया, हम आपको आपका कर्तव्य बता रहे हैं। देखिए, आप यदि सुखी होना चाहते हैं तो अपना कर्तव्य देखो। होता क्या है इस जगत में महेंद्र भाई, ये जीव अपने को अधिकार देखता है, ये तो मेरा अधिकार है, और सामने वाले को कर्तव्य याद है, ये कर्तव्य है तुम्हारा। अपने अधिकार देखता है और दूसरे के कर्तव्य दिखाता है। और यदि ऐसा हो जाए, हम अपना कर्तव्य देखें और दूसरे का अधिकार देखने लगे हैं तो गृहस्थी सुधर जाए, परिवार में शांति हो जाए, झगड़े नहीं, बिजनेस अच्छे से चले, काम अच्छे से हो। सब क्या करना पड़ेगा, सामने वाले का अधिकार देखो, इसका अधिकार है, इनका ये अधिकार है, और मेरा कर्तव्य क्या है। हम यदि छोटे हैं तो हमारा कर्तव्य है बड़ों का सम्मान करना, ये कर्तव्य है हमारा। अब ये नहीं देखता है कोई, ये हमारा कर्तव्य है। दूसरों के अधिकार देखो, कि बड़ों को अधिकार है हमारे को कुछ भी कहने का। हम छोटे हैं ना, दो तरफ से सोचा हमने, हमारा कर्तव्य बड़ों का सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है, और दूसरों के अधिकार देखो कि उनका अधिकार है हमें कुछ भी कहने का, कुछ भी डांटने का, ये उनका अधिकार है। अब बड़े क्या सोचें, बोलो कि ये हमारे छोटे हैं, इन छोटों का सहयोग करना ये हमारा कर्तव्य है। ना समझे कि अपने संरक्षण में रह रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है, और हमसे छोटे हैं इनका अधिकार बनता है इस चीज का, ये विचार करो। ये तो जनरल बात कही, लेकिन आचार्य देव तो बहुत ऊपर उसके बात कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं तेरा कर्तव्य क्या है, बोले तू अपने आप को जैसा मानेगा वैसा कर्तव्य समझेगा। तू अपने आप को मानता क्या है ये बता, आप क्या मानते हैं अपने आप को? बिजनेस मैन तो फिर बिजनेस करता है। आप अपने आप को क्या मानते हैं, गृहस्थ तो फिर गृहस्थी जैसे कार्य करता है। आप अपने आप को क्या मानते हैं, पुरुष तो पुरुषों जैसे कार्य करता है। और यदि आप अपने आप को मानते हैं स्त्री तो स्त्रियों जैसे कार्य करता है। आप जैसा मानेंगे, अपने आप को जैसा स्वीकार करेंगे, वैसे कार्य करने लग जाएंगे। नियम है यहाँ का तो पता नहीं मेरे को, अमेरिका का तो, लेकिन इंडिया की बात कहता हूँ। जो अपने आप को स्त्री मानते हैं, ये सुबह उठते ही पहले झाड़ू हाथ में ले लेते हैं घर की सफाई के लिए। क्यों पुरुष क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो अपने आप को पुरुष मानते हैं। जो अपने आप को स्त्री मानता है उसे ऐसे लगता है झाड़ू लगाना मेरा कर्तव्य है, भोजन बनाना मेरा कर्तव्य है, घर की साफ सफाई मेरा कर्तव्य है। जो अपने आप को पुरुष मानता है वो ये समझता है कि पैसा कमाना मेरा काम है, घर संभालना इनका काम है। क्यों भाई घर संभालना तुम्हारा काम क्यों नहीं है? नहीं, मैं तो आदमी हूँ, मैं तो पुरुष हूँ,
क्यों मुझे पैसा कमाना तुम्हारा, मेरा काम तो घर का काम है। आप समझ रहे, आपने जैसा अपने आप को माना, एक व्यक्ति ने अपने आप को राजा माना तो बोलो झाड़ू लगा सकता है क्या?
नहीं,
नहीं लगा सकता है। और एक व्यक्ति यदि अपने आप को चपरासी मानता है तो अब क्या करेगा? तो अब इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी समझेगा। तो तुम अपने आप को आत्मा मानते हो या नहीं ये बताओ। पहले में पहले कर्तव्य कहा भाई सर, पहला कर्तव्य है ये, फर्स्ट कर्तव्य, फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, सबसे पहला काम। क्या काम कहा? निजात्म तत्व की स्वीकृति, अपने आप को आत्मा स्वीकार करो, ये काम महत्वपूर्ण है। आत्मा स्वीकार करो, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं संजीव गोदा नहीं हूँ, कौन हूँ मैं? बोले स्वीकार करके मैं आत्मा हूँ। बोले उससे क्या होगा? सारे काम बंद जगत के, सब काम धाम बंद, सारी टेंशन से मुक्ति, हर जगह आराम मिलेगा तेरे को। तूने अपने आप को आत्मा स्वीकार किया। आत्मा स्वीकार नहीं करने पर तकलीफ है भाई साहब, जितने संकट है ना, ये सारे संकट अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करने पर है। बोलो, आपको लगता है कि सामने वाला आत्मा है? आपको लगता है कि मैं आत्मा हूँ? फिर किसी व्यक्ति ने मेरे को कोई अपशब्द कह दिए तो किसको कहे बताओ, किसको कहे? आप अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हो? जो अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हैं ना, वो फिर किसी के द्वारा कहे गए अपशब्द सुनने पर तकलीफ नहीं होती उनको, कोई बात नहीं। ये मुझे कह रहा है, इसको ऐसे लग रहा है सामने वाले व्यक्ति को कि ये मुझे कह रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मुझे जानता ही नहीं है, ये मुझे कुछ कह ही नहीं सकता है। सोचो जरा, ये आत्म तत्व स्वीकार करने पर कितना बड़ा बल मिलता है, कितनी पावर आ जाती है। अब एक बार कल्पना करके देखो, बिजनेस में नुकसान हो गया, तुम कौन? क्या आत्मा? नुकसान किसका? पुद्गल का। पुद्गल के घटने और बढ़ने से मुझ में क्या बढ़ गया और मुझ में क्या घट गया? अब तकलीफ इस बात की है, सारी तकलीफ इसी बात से खड़ी होती है कि हम अपने आप को चैतन्य स्वीकार नहीं करते, हम अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करते। भूख लग रही है, आत्मा स्वीकार करो। कई बार अभी एक प्रश्न किया हमसे किसी ने कि फिर मरने के बाद आत्मा जाती कहाँ है? तो जवाब है आपका, मरने के बाद में ये आत्मा कहाँ चले जाती है? तो मैंने कहा सुनो, तुम अपने आप को आत्मा स्वीकार करोगे ना तो मौत का प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा। ये मौत का प्रश्न, मौत का भय तब खड़ा होता है जब तुम आत्मा नहीं मानते हो अपने आप को। तुम अपने आप को आत्मा मानोगे तो राग द्वेष खड़े नहीं होंगे, तुम अपने आप को आत्मा मानोगे तो झगड़े का काम ही नहीं है, विवाद का काम ही नहीं है। आत्मा मानो तो सही, भूख प्यास नहीं है, सर्दी गर्मी नहीं है, खांसी जुकाम नहीं है, घुटने के दर्द नहीं है, शरीर की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बताओ पैरों की तकलीफ कितनी तकलीफ देगी? कुछ नहीं, मैं आत्मा हूँ। यदि ये स्वीकार कर रहा है, आँख से दिखना कम हो गया, आँख से दिखना बंद हो गया, कितनी तकलीफ होगी बताओ रमेश भाई? आँख से दिखना बंद हो गया, तकलीफ कितनी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं आँख से देखता ही नहीं था, मैं तो ज्ञान से देखता था। बात कहने की नहीं है, बात स्वीकार करने की है। ये बात जचती है या नहीं जचती है बताओ? नहीं जचती है, कर्णेंद्री से जच रही है, मेरे सामने जच रही है। यहाँ से जब उठेंगे ना तो फिर पल्ला झाड़ करके फिर वही चालू हो जाएगा सब। राग द्वेष और कषायें, ये राग द्वेष और कषायें तब उत्पन्न होते हैं जब तुम अपने आप को आत्मा नहीं मानते हो। मिथ्यात्व इस बात का नाम है कि तुम अपने आप को आत्मा नहीं मानते हो। कषायें इसलिए उत्पन्न होती है कि तुम अपने आप को आत्मा नहीं मानते हो। गुस्सा तुम्हें इसलिए आता है कि तुम अपने आप को आत्मा नहीं मानते हो। घमंड तुम्हें इसलिए हो जाता है क्योंकि तुम अपने आप को आत्मा नहीं मानते हो। सारे विकार एक एक झटके से, एक बॉल में सारे विकेट आउट कर दिए। कितनी लंबी सेना थी मोह की, बहुत बड़ी सेना थी मोह की, और पूरी की पूरी सेना को
एक तीर में धराशाही कर दिया गया। कौन सा तीर चलाया? बोले तू तो आत्मा है, बात खत्म। सिर्फ आत्मा हूँ मैं। उस आत्मा की चर्चा ये आचार्य देव ने यहाँ कही है। देखिए अनुवाद पढ़ता हूँ इसका। जो एक ज्ञायक भाव है, जो एक ज्ञायक भाव है, वह अप्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। क्या हो गया? क्या कह रहे? जो एक ज्ञायक भाव है, वो ज्ञायक भाव अप्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। ये अप्रमत्त प्रमत्त क्या होता है? प्रमत्त माने होता है प्रमाद, अप्रमत्त माने होता है बिना प्रमाद वाला। आपको प्रमाद आ रहा है क्या कि नहीं? तो आप प्रमादी हो कि नहीं? प्रमाद भी नहीं और अप्रमाद भी नहीं, ना प्रमत्तो और ना अपमत्तो, अपमत्तो न प्रमत्तो, ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है। क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रही बात हमारे को। प्रमत्त माने प्रमाद, अप्रमत्त माने अप्रमाद। एक अर्थ ये हुआ, प्रमादी अप्रमादी दोनों नहीं है। दूसरा अर्थ, प्रमत्त है छठे गुण स्थान का नाम, छठे गुण स्थान का नाम प्रमद प्रमत्त है, सातवें गुण स्थान का नाम अप्रमत्त है। ये कौन लिख रहे हैं गाथा? ये कुंद कुंदाचार्य। कौन से गुण स्थान वाले हैं? छठे सातवें वाले। फिर छठे सातवें वाले मुनिराज क्या कह रहे हैं कि मैं प्रमत्त भी नहीं हूँ और अप्रमत्त भी नहीं हूँ। क्या कह रहे हो? छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज अपने आप के बारे में कह रहे हैं कि मैं प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं हूँ, प्रमत्त अप्रमत्त पना नहीं है। मानी छठा सातवा गुण स्थान ये मुझमें नहीं है, मैं छठे सातवें गुण स्थान से पार एक तत्व हूँ। कैसे बोली थी? छठे सातवें गुण स्थान से पार कह रहे हैं। छठे सातवें गुण स्थान में बैठे हुए ये मनुष्य होकर के बात कहे कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, बिजनेसमैन होकर के बात कहे कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। ये ऐसी बात है? क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव? इतना ही नहीं, टीकाकारों और व्याख्याकारों ने एक और अर्थ निकाला इसका। तो क्या अर्थ किया? कि प्रमत्त शब्द का अर्थ अकेला छठा गुण स्थान नहीं होता, प्रमत्त माने पहले से छठे गुण स्थान तक, उसका नाम है प्रमत्त। यहाँ प्रमत्त शब्द अंत दीपक है, अंत दीपक। अंत दीपक समझते हैं? अंत दीपक का कोई एग्जांपल है? अंत दीपक नहीं समझते आप? तीन तरह के दीपक की चर्चा मिलती है न्याय शास्त्रों में, एक आदि दीपक, एक मध्य दीपक, एक अंत दीपक। मंगलाचरण भी इसी तरह से करते हैं, एक आदि मंगलाचरण, एक मध्य मंगलाचरण और एक अंतिम मंगल मंगलाचरण, ऐसा भी करते हैं कई बार। जैसे देखिए मकान के दरवाजे पर दीपक रखा हो तो दीपक का प्रकाश मकान के अंदर तक आ जाता है, वो आदि दीपक। शुरुआत में जो काम किया उसका प्रकाश लास्ट तक रहे, वो आदि दीपक। एक होता है अंत दीपक, लास्ट में कुछ लिखा हो उसका प्रकाश प्रारंभ तक आए, वो कहलाता है अंत दीपक। लास्ट में रखो उसका प्रकाश वहां तक दिखाई दिया। एक है मध्य, सेंटर में रखो, इधर भी और उधर भी दोनों तरफ दिखे। कोई प्रयोग दिखता है आपको अंत दीपक का? एक प्रयोग तो इन्होंने यहाँ कहा कि प्रमत्त नहीं है। प्रमत्त नहीं है का अर्थ, प्रमत्त शब्द का प्रयोग अकेले छठे गुणस्थान के अर्थ में नहीं, पहले से लगाओ इस प्रमाद को। पहले गुणस्थान वाले भी प्रमादी हैं, दूसरे गुणस्थान वाले भी प्रमादी हैं, तीसरे चौथे और पांचवें गुणस्थान वाले भी प्रमादी हैं। तो वहां क्यों नहीं लगाया आपने कि छठे में लगा दिया ना प्रमत्त? ये अंत दीपक है, ये प्रमत्त शब्द का प्रयोग यहाँ से स्टार्टिंग तक सब जगह पर लगेगा। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण देता हूँ आपको, रमोकार महामंत्र सब जानते हैं। इसके अंतिम पद में कुछ शब्द दिए, लोए और सव, नमो लोए सव साहुनम। पहला पद दिया नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, इसी के अकॉर्डिंग चले तो लास्ट होना चाहिए था नमो ताहुनम, नमो ताहुनम होना चाहिए, नमो वरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो उपज्ञायाणम, नमो ताहुनम। लोहे शब्द लगाया लेकिन वहां साधुओं के साथ में। लोहे शब्द का मतलब क्या है? लोहे माने लोक के, लोक में, सब माने सभी, तो लोक के सभी ये शब्द दिए वहां। और नमो माने नमस्कार, पावन मतलब साधुओं को, ये दो शब्द एक्स्ट्रा दे दिए, लोहे और शब्द। लोक के सभी साधुओं को वंदन है, नमस्कार है। तो आचार्यों ने इसकी जब व्याख्याएं लिखी तो उन्होंने कहा लोहे और शब्द शब्द ये अंत दीपक है। मतलब क्या? अंत में कहे लेकिन इन दोनों का प्रकाश ऊपर तक जाएगा। नमो लोए सब अरहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब आयरियाणम, नमो लोए सब वज्जायाणम, नमो लोए सब साहुणम। अर्थ करते समय अर्थ ऐसा करें, सब चीज साथ में लगाएंगे उसको। नमो अरहंताणम का क्या अर्थ है? अरहंतों को नमस्कार। नमो अरहंताणम, अरहंतों को नमस्कार। नहीं नहीं, लोक के सब अरहंतों को नमस्कार, ये अर्थ है उसका। लोक के सब कहां से ले आए यहाँ? नमो अरहंताणम शब्द दिया है जिसमें अर्थ करना नहीं आता है। अंत दीपक है ना नीचे, उसका प्रकाश यहाँ तक आएगा। नमो सिद्धाणम का अर्थ क्या है? लोक के सब सिद्धों को नमस्कार। नमो आयरियाणम का अर्थ क्या है? लोक के सब आचार्यों को नमस्कार। समझ में आ रही है? ठीक, कैसे लगाया आपने अंत दीपक? दीपक समझ में आया आपको क्या है? नहीं आया वो समझ में तो शाम को फिर दीपक की बात करेंगे थोड़ी सी। दीपक कहकर के क्या कहना चाहते हैं वो चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रमत्त शब्द का अर्थ हो गया पहले गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक, ये हो गया प्रमत्त। क्योंकि ये अंत दीपक है, अंत दीपक होने से पहले से छठे गुणस्थान तक सभी गुणस्थानों में प्रमाद पाया जाता है, इसलिए प्रमत्त शब्द में 1-6 इन 6 गुणस्थानों को शामिल कर लिया। नेक्स्ट, सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त। यहाँ अप्रमत्त शब्द का प्रयोग अकेला सातवें गुणस्थान के अर्थ में नहीं किया गया। अप्रमत्त शब्द जो सातवें में प्रयोग किया है वो आदि दीपक है, माने सातवें गुणस्थान से लेकर आगे के सभी गुणस्थान अप्रमत्त हैं। सातवां भी अप्रमादी है, आठवें में भी प्रमाद नहीं है, नौवें, दसवें, बारहवें, तेरहवें, चौदहवें, किसी गुणस्थान में प्रमाद नहीं है, वो अप्रमत्त है। इसलिए आदि दीपक शब्द का प्रयोग किया अप्रमत्त कह करके। तो प्रमत्त अप्रमत्त का मतलब बतलाओ क्या हुआ? बोलो। गुणस्थान से पार है, यह अर्थवादी लगती है। प्रमत्त नहीं है माने 6 गुणस्थान नहीं है, अप्रमत्त नहीं है 7-14 तक के गुणस्थान नहीं है, अप्रमत्त। तो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है इसका अर्थ बोले 14 गुणस्थानों से पार है, गुणस्थान अतीत है। किसकी बात बता रहे हैं ये गुणस्थान अतीत? शुद्ध आत्मा की। हाँ, शुद्ध आत्मा तो गुणस्थान अतीत होते हैं, हमें पता है। सिद्ध भगवान होते हैं ना, उनके गुणस्थान नहीं होते। सिद्ध भगवान के गुणस्थान नहीं होते, उनकी बात बता रहे होंगे। अरे नहीं, गुणस्थानों में रहते हुए गुणस्थान अतीत है। गुणस्थान में रहते हुए गुणस्थान वाला मत देख, ये ऐसा दिखा रहे हैं। ये बात क्या कहना चाह रहे हैं? ये गुणस्थान अतीत कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? पर्याय मात्र से पार बताना चाह रहे हैं। गुणस्थान माने पर्याय, गुणस्थान माने क्षणिक अवस्था। ये गुणस्थान तुझ में नहीं है, तू गुणस्थान से परे है, तेरे में कोई गुणस्थान नहीं होते। क्या बात कर रहे हो? हम तो पहले गुणस्थान वाले हैं, हमें गुणस्थान नहीं होते। ये बात कैसे बनेगी? ये बात को समझ में नहीं आ रही है। हमने तो आज तक यही सुना है मैं पहले गुणस्थान वाला हूँ, मेरे पहला गुणस्थान है। और आपको शास्त्र खोल करके दिखा दे हम,
कि सुनो भाई, तुम पहले गुणस्थान वाले हो ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा के गुणस्थान होने लगे तो आत्मा खत्म हो जाएगा भाई। क्या मतलब? हमने कहा आत्मा पहले गुणस्थान वाला, बराबर। जब चौथे में गया तो पहले गुणस्थान वाला था ना आत्मा, तो आत्मा ही नहीं रहेगा। आत्मा को यदि मिथ्यात्मी मान लिया जाए तो मिथ्यात्व के अभाव के साथ साथ आत्मा का अभाव हो जाए, समझ रहे हैं? क्या क्या कही मैंने बात? हमने आत्मा को मिथ्यात्मी मान लिया, अब क्या होगा मिथ्यात्मी मान लेने पर? हमने कहा आत्मा मिथ्यात्मी है, तो मिथ्यात्म गया आत्मा भी चला गया, लेकिन भाई मिथ्यात्म अलग चीज है और आत्मा अलग है। मिथ्यात्म चला जाता है और आत्मा ज्यों का त्यों रह जाता है। मिथ्यात्म चला जाए और आत्मा रह जाए, इसका मतलब ये आत्मा में मिथ्यात्म नहीं है। देखो, कभी बुखार हुआ है आपके? बुखार हुआ है, शरीर को होता है कि आत्मा को? शरीर को होता है। आत्मा का बुखार अलग है, शरीर का बुखार अलग तरह का होता है। शरीर को बुखार आया तो वो बुखार शरीर बुखार रूप हो गया कि बुखार अलग है शरीर अलग है? अलग अलग है, दोनों अलग है भाई। शरीर तपता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ताप किसका है बताओ? शरीर का नहीं है, शरीर का नहीं है वो ताप। वो ताप ताप का है, वो ताप बुखार का है, वो ताप शरीर का नहीं है। वो जो गर्मी दिखाई दे रही है, जो गर्म दिखाई दे रहा है, वो जो टेम्परेचर आया है 104, वो शरीर का नहीं है, वो बुखार का टेम्परेचर है। इसलिए डॉक्टर बहुत वेद विज्ञान करते हैं, बहुत वेद विज्ञानी होते हैं। वो ऐसी दवाई देते हैं जिस दवाई के माध्यम से शरीर और बुखार इन दोनों की जो संधि है बारीक, उस संधि पर चोट पड़े तो बुखार अलग हो जाए और शरीर ज्यों का त्यों रह जाए। बुखार चला जाता है और शरीर ज्यों का त्यों रह जाता है। ऐसा नहीं है कि बुखार जाए और बुखार के साथ साथ शरीर भी चला जाए, ऐसा हो तो क्या हो?
बहुत बढ़िया उदाहरण
है। यदि बुखार के जाने के साथ साथ शरीर भी चला जाए तो बोलो आप इलाज कराओगे कि नहीं? बहुत समय हो गया बुखार नहीं मिट रहा है, बहुत समय हो गया, तकलीफ बहुत है, ये तकलीफ मिट नहीं रही है, इलाज कराना है। बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, हो नहीं रहा है कि सुनो अब सही जगह पर आए हो तुम, ऐसा इलाज करूंगा कि न रोग रहेगा न रोगी रहेगा। फिल्म घबरा गया पेशेंट जी का, डर के मारे उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं कराना है। अरे तुम घबरा गए, तुम डरते क्यों? न रोग रहेगा न रोगी रहेगा। कि अरे नहीं नहीं मुझे मरना नहीं है, कि तुम्हें मारने की नहीं कह रहा हूँ, रोग के ऊपर ऐसी चोट मारेंगे कि रोग चला जाएगा तब तुम रोगी भी नहीं रहोगे। मतलब समझो उसके पीछे का अभिप्राय क्या है। ऐसी जगह पर चोट पड़े जिस तरह से बुखार के काल में अज्ञानी व्यक्ति, ना समझ व्यक्ति शरीर और बुखार में भेद विज्ञान नहीं कर पाता है, वो समझता है कि शरीर ही बुखार में हो गया है। उसी तरह से राग के काल में अज्ञानी व्यक्ति राग और आत्मा में भेद विज्ञान नहीं कर पाता है, लेकिन जिस तरह से ज्ञानी वैद्य बुखार और शरीर को अलग अलग समझते हैं और दवाई ऐसी देते हैं जिससे बुखार चला जाए और शरीर रह जाए, उसी तरह से ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष राग और आत्मा को भिन्न भिन्न जानते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं कि राग पर पड़े चोट और राग हो नष्ट और जायक ज्यों का त्यों बना रहे, उस आत्मा को यहाँ समय सार में आचार्य कुंद स्वामी दिखा रहे हैं, राग से भिन्न आत्मा को दिखा रहे हैं। सारे जगत में चमत्कार दिखते हैं महेंद्र भाई, असली चमत्कार क्या है ये बताओ? सारे जगत में इतने चमत्कार दिखते हैं हमारे को, जहाँ देखो वहाँ आजकल इस टेक्नोलॉजी के जमाने में तो चमत्कार ही चमत्कार दिख रहे हैं, आश्चर्य दिख रहा है हमारे को। यहाँ प्रवचन चलता है, लाइव सुन रहे हैं, कितने लोग कॉन्फ्रेंस पर जुड़े हुए हैं सुन रहे हैं,
ये क्या हो रहा है, ये चमत्कार नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से दबाया हमने और एकदम पूरे घर में रोशनी हो गई, ये क्या हुआ, ये चमत्कार दिख रहे हैं। बैठे हैं यहाँ, मैच हो रहा है वहाँ इंग्लैंड में हो रहा है और यहाँ बैठे बैठे दिख रहा है, ये चमत्कार नहीं दिख रहे हैं आपको।
अरे साहब कैंसर हो गया था, आपको पता है मैंने भाई 6 महीने पहले मेरे कैंसर बता दिया था डॉक्टर ने।
फिर क्या हुआ,
फिर अचानक मैंने कुछ मंत्र वंत्र के जाप किए और रोग ठीक हो गया, चमत्कार हो गया। कैसा लगता है अपने को, गजब चमत्कार हो गया भाई, तो गजब ही बात हो गई, चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार है, रोग दूर हो जाना चमत्कार नहीं है महेंद्र भाई, रोग दूर हो जाना चमत्कार नहीं है, रोग के काल में भी रोग दूर करने का विकल्प नहीं आना चमत्कार है। बात समझ में आई क्या कह दिया हमने, रोग दूर करना इसमें क्या चमत्कार है, चमत्कार हो गया साहब, चमत्कार हो गया साहब, रोग दूर हो गया साहब, बीमारी दूर हो गई, क्या चमत्कार हो गया। अरे रोग शरीर का है, रोग दूर करने का विकल्प टूट जाए, रोग दूर करने का विकल्प नहीं आता है, ये चमत्कार है। उठा के देखो आप महामुनि राजयोग का जीवन, अरे 700 वर्षों तक शरीर में कोढ़ रहा, कुष्ठ रोग रहा 700 वर्षों तक, लेकिन उसके बावजूद भी एक विकल्प मात्र नहीं आया कि कुष्ठ रोग दूर हो जाए, ये चमत्कार है। ये कैसा चमत्कार है, ये ज्ञानियों के जीवन में होते हैं चमत्कार, अपने आप को भिन्न अनुभव करते हैं देह से, देह से भिन्न अनुभव करे तो सारे चमत्कार ही चमत्कार है, एक के बाद एक चमत्कार होते चले जाएंगे। देह से भिन्न अनुभव करे महेंद्र भाई तो सम्यक दर्शन होता है, अनादि का मिथ्या तो नष्ट हो जाता है, ये चमत्कार है। देह से भिन्न आत्म तत्व को देखे तो अतिन्द्रिय आनंद के झरने झरे, ये चमत्कार है। देह से भिन्न आत्म तत्व को देखे तो अनंत अवस्था की प्राप्ति हो जाए, परम औदारिक शरीर हो जाए, ये चमत्कार है। देह से भिन्न आत्मा को देखे तो सिद्धत्व की प्राप्ति हो, ये चमत्कार है। देह से भिन्न आत्मा को देखे और लोकालोक दिखे, ये चमत्कार है। देखता नहीं है, आत्मा को देखा नहीं आज तक कभी, अपने आप को देखा नहीं, अपने आप को देखने का विकल्प नहीं आया इसको। विकल्पों के काल में भी विकल्प से भिन्न ज्ञायक दिखे, रोग के काल में रोग से भिन्न ज्ञायक दिखे, बीमारी के काल में बीमारी से भिन्न दिखे, मलिन कपड़े के काल में मलिनता से भिन्न दिखे, देखने की दृष्टि है। वो दृष्टि यहाँ आचार्य कुंकुल स्वामी दे रहे हैं, उस आत्मा को देखो किस दृष्टि से देखा जाएगा, इस आत्मा को देखने का नजरिया कुछ अलग प्रकार का है। हिसाब आप क्या बात कर रहे हो, द्रव्य कर्म से रहित दिखा रहे हो, संसार दशा में रहते हुए कि हाँ दिखा रहे हैं कि है का कर्म तो बजे, तेरी दृष्टि खोटी है, तो देखने का नजरिया नहीं है। तेरे पास में देखने का नजरिया हो तो तुझे वो ज्ञायक तत्व दिखाई दे दे। सब हर फील्ड में जिसका जो फील्ड है वो व्यक्ति उन बारीकियों को समझता है, हर फील्ड में अपनी अपनी बारीकियों को समझता है, वो देख लेता है उसमें से वो चीज दिख जाती है जो जनरल व्यक्ति को नहीं दिखती है ना, वो उस फील्ड के महारथी लोगों को वो बारीकियां दिख जाती है, पकड़ में आ जाती है। आप यदि अकाउंट्स के गहरे जानकार हैं तो किसी की भी फाइल को देख करके तुरंत आप पकड़ लेंगे कि यार यहाँ मिस्टेक हो रही है। आप यदि मेडिकल लाइन में हैं, आप यदि अच्छे डॉक्टर हैं तो मरीज को देख के पकड़ लेते हैं आपकी यार ये इस वजह से ये बीमारी है, पकड़ में आती है कि नहीं। जिस फील्ड में आप हैं, तो आचार्य कुंद स्वामी जिस फील्ड में हैं, इन्होंने हमें देखा, महेंद्र भाई आपको देखा, जगत के जीवों को देखा, सामने बैठे हुए शिष्य को देखा, और देखते ही इन्होंने इनके पकड़ में आ गई, वो इनके पकड़ में आ गई कि सुन, ये शुद्ध आत्म तत्व इस देह देवालय में तेरे विराजमान है वर्तमान में, ये हमें दिख रहा है। तू जो सोच रहा है ना कि मैं शुद्ध नहीं हूँ, तुझे नहीं दिखता है, हमें पकड़ में आ रहा है तू शुद्ध है, तेरे में द्रव्य कर्म नहीं है, तेरे में भाव कर्म नहीं है, तेरे में नौ कर्म नहीं है, तू द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित जय भगवान आत्मा है, तू देख अपने आप को। और जो जीव आचार्य कुंद के निर्देशन में उस प्रमत्व और अप्रमत्व से रहित उस ज्ञायक भाव को देखते हैं, ये ज्ञायक भाव को प्राप्त कर लेते हैं, और जो ज्ञायक भाव को प्राप्त करते हैं ये ज्ञायक में ही समा जाते हैं, उन्हें वैसे आनंद की प्राप्ति होती है जो आनंद सिद्ध परमात्मा उपभोग कर रहे हैं। और यदि आप भी चाहते हैं और सिद्धों जैसे सुख को भोगना, तो उस ज्ञायक भाव की दृष्टि करें, निश्चित तौर पर
सिद्ध समान सुख का वेदन होगा। हम सभी को अपने जीवन में उन सिद्धों जैसा सुख प्रकट हो, इसी भावना से, इसी पवित्र भावना से मैं बात को यही विराम देता हूँ।
ये स्वरूप समझा बिना पानो दुखन समझायुते पदायु श्री सदगुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदान जी ओ वंदन अग्नि।